आज के हमारे मेहमान हैं हुल्लड़ मुरादाबादी। आपको सुनने के लिए स्टूडियो में हमारे बहुत सारे श्रोता आए हुए हैं। बस हुल्लड़ साहब, आप माइक के करीब आइए और शुरू हो जाइए।
लो गुरु हो रही हूं शुरू।
बात यह है कि औरत विवाह के बाद 3 साल तक चंद्रमुखी नजर आती है, उसके बाद 3 साल तक सूर्यमुखी नजर आती है, और उसके बाद सारा जिंदगी ज्वालामुखी नजर आती है। कविता प्रस्तुत है। पति और पत्नी दोनों नौकरी करते थे, दफ्तर से आने के बाद नियमित रूप से लड़ते थे। पत्नी गुर्राती थी, आवाज मेरे कमरे तक आती थी, तुम्हारे बाप का दिया नहीं खाती हूं, खुद कमा के लाती हूं। पति कहता था, मैं तो तुमसे 5 साल से परेशान हूं, बीमार होती हो पर मरती नहीं हो, इसी बात से हैरान हूं। एक दिन वो सचमुच मर गई। शव यात्रा में मैं भी गया। अचानक अर्थी एक टेलीफोन के खंबे से टकराई। अर्थी में से आवाज आई, यस प्लीज। नमस्कार, फरीदाबाद की लाइन खराब है, दिल्ली से बात कीजिए। लोग बोले, ये तो जिंदा हो गई, बचाने और जिलाने वाला ईश्वर है। उसका पति बोला, आपको मालूम नहीं है, मेरी पत्नी टेलीफोन ऑपरेटर है। 2 साल के बाद फिर मरी। इस बार पतिदेव माइक लिए हुए सबसे आगे थे। लोग कह रहे थे, राम नाम सत्य है, और वो कह रहा था, खंबा बचा के। एक दफा मैं कानपुर कवि सम्मेलन में फंस गया। वहां मैंने स्टेज पर देखा कि 60 आदमी बैठे हुए। तो मैंने कन्वीनर से पूछा, भाई साहब ये सब कवि हैं क्या? बोले, बिल्कुल कवि है। मैंने कहा, इसमें बाहर के कितने हैं? बोले, 8। मैंने, ये तो बैठे हैं 60। बोले, बाकी 52 लोकल हैं, स्थानीय। मैंने, इतने लोकल? बोला, अभी तो एक ही मोहल्ले के आए। मैंने कहा, आज तो इस कवि सम्मेलन का भगवान ही मालिक है। तो मैंने वहां पर क्या देखा वो आपको सुना रहा हूं। संचालक ने ठहाका लगाया और सबसे पहले फिल्मों के गीतकार संतोषानंद को माइक पर बुलाया। संतोष जी ने सुनाया, मेरी माँ है जब बीमार, मेरी माँ है जब बीमार।
कैसे होली खेलू रे।
भीड़ में बैठा हुआ एक बोला, भाया जब अम्मा बीमार थी तो तू कवि सम्मेलन में क्यों आया? संतोष जी ने गीत को आगे बढ़ाया। घर में टाट भी नहीं, टूटी खाट भी नहीं। फिर आवाज आई, गीत सुना रहा है या घर की इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा है? संचालक ने तब एक वीरस के कवि को पुकारा। वीरस के कवि ने सुनाया, उसने आगे देखा न पीछे, वो बढ़ता ही चला गया। उसने दाएं देखा न बाएं, वो बढ़ता ही चला गया। उसने ऊपर देखा न नीचे, वो बढ़ता ही चला गया। न उसे हवा रोक सकी न आंधी, वो बढ़ता ही चला गया। पब्लिक में से आवाज आई, ट्रक ड्राइवर होगा। संचालक ने कोने में बैठे हुए एक सज्जन से पूछा, आप कवि हैं क्या? वो बोला, नहीं मैं आदमी हूं। बोले, फिर आपने कुर्ता क्यों पहन रखा है? बाल भी आपने जरूरत से ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, आप अवश्य रचना सुनाने के लिए आए हुए हैं। बोले, सर मैंने आपसे कह दिया मैं कवि नहीं हूं। बोले, नहीं है तो भी आना पड़ेगा, हमारा कवि सम्मेलन उखड़ रहा है, इसको जमाना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है जबरदस्ती करते हैं तो गाता हूं।
मेरे घर के सामने एक है दौराहा, और दौराहे के सामने एक है चौराहा, और चौराहे के सामने एक गली है, और पहली गली में दूसरी गली है। पहली गली में दूसरी गली है और तीसरी गली में चौथी गली है।
सनुजय बोला, ये आप क्या सुना रहे हैं? बोले, मैंने तो आपसे पहली कहा था मैं कवि नहीं हूं, पूरी 175 गली है, पूरी 175 गली है, सब सुनाऊं? संचालक बोला, भगवान के लिए बैठ जाइए। बोले, बैठने के 500 रुपए दिलवाइए। बैठने के
500 रुपए दिलवाइए।
मैंने देखा कि 5 गंजे मेरे सामने बैठे हुए हैं। कन्वीनर बोला तो आप को तब जाने जब इन गंजों पे कोई कविता सुनाओ। हमने कहा ठीक है सुना देते हैं। एक हमारे गंजे मित्र हैं, हर एंगल से विचित्र हैं। परसों अंधेरी स्टेशन पे मिल गए, मिलते ही रोने लगे, आंसुओं से मेरे कपड़े भिगोने लगे। मैंने पूछा क्या हो गया भैये, बोले हमें तो मरी जाना चाहिए। मैंने पूछा क्या हो गया भैये, बोले हमें तो मरी जाना चाहिए, महंगाई और गरीबी ने ऐसा मारा है कस के पंजा कि डेविड की तरह हमें भी कर दिया गंजा। डेविड की तरह हमें भी कर दिया गंजा, जवानी के दिनों में गंजा सुना रहा, जवानी के दिनों में हमारे सर पर बरगद के समान बाल थे, लोग कहते हैं कि बेमिसाल थे। परसों अपने पुराने मकान में सफेदी करवा रहा था, पुताई करवा रहा था, इधर का सामान उधर उठा रहा था, अचानक मेरा एक कॉलेज के जमाने का चित्र नीचे फिसल गया और इत्तेफाक से मेरे छोटे बच्चों को मिल गया। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी ये किसका चित्र है? तो माँ ने कहा बेटे रणधीर ये है तेरे पापा की तस्वीर। बच्चे ने मेरी तरफ घूरा और घूर कर जो वाक्य कहा वो आज तक मेरी खोपड़ी पे चढ़ा रहता है। बच्चे ने कहा था अगर ये मेरे पापा की तस्वीर है तो हमारे घर ये गंजा कौन पड़ा रहता है।